Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान से बढ़कर किसी और का नाम नहीं होता, उसके सिमरण से बढ़कर दूजा कोई काम नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत में होती है रुसवाई, लेकिन उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। इसीलिए ईश्वर की याद, उसकी मोहब्बत में तल्लीन रहना, यही समाधान आपको लगातार सिखा रहा है। और मेडिटेशन और प्रार्थना के लिए भी एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि प्रार्थना वो है जिसमें आप भगवान से बात करते हैं, लेकिन मेडिटेशन वो है जिसमें भगवान आपसे बात करते हैं। अब तक हम भगवान से बातें करते आए हैं, उसे अपने दुखड़े सुनाते आए हैं, अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ें जिसमें भगवान हमसे बातें करें, हमारी समस्याओं का निदान करें, हमारे जीवन को सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण कर दें। इसीलिए मेडिटेशन की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा से ऐसे जुड़ जाएं कि वो आपके जीवन में शामिल हो जाएं। आइए इसी सुंदर चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद
भ्राता जी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम एक समाधान बैंक या सहयोग बैंक बनाएं, एक ऐसा बैंक जिसमें मेडिटेशन करके व्यक्ति अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि मेडिटेशन को व्यक्ति पहले अच्छी तरह से समझे, ताकि हाँ, अच्छी तरह करके इस बैंक में ज्यादा से ज्यादा अपने जमा का खाता बढ़ा सके।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों लोग जी इस बैंक से जुड़ेंगे हमारे जी, और अपना योग का दान, योग के द्वारा योग का दान, ये एक नया योगदान है जी, इसको देंगे। लेकिन जैसे आप चर्चा कर रहे थे, प्यार भगवान से बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज ये चीज पूरी तरह से लोप हो चुकी है जी। भक्तों को देखो, भगवान से कोई प्यार नहीं। मुश्किल से कोई भक्त मिलेगा जिसका श्री राम से प्यार हो या श्री कृष्ण से प्यार हो या कोई राधे से प्यार करते हैं, लेकिन जो असलियत में भगवान है निराकार, उससे प्यार का तो प्रश्न ही नहीं होता। लोग ये भी सोचते आएंगे निराकार से प्यार कैसे करें।
अब उसको साकार स्वरूप दे दिया,
साकार स्वरूप इसीलिए दिए उसको। और शंकराचार्य के आने पर ये बहुत बड़ी समस्या भारत में हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया जिसमें निराकार की मान्यता थी। अब निराकार की कैसे तो भक्ति करें, कैसे उससे प्यार करें, तो वो एक रस जो भक्ति का था वो समाप्त होने लगा। तो फिर रामानुजाचार्य ने आके उसमें संशोधन किए, परिवर्तन किए और श्री कृष्ण को सामने रखा, कुछ साकार रूप सामने रखे। तो प्यार के लिए साकार की जरूरत होती है, लेकिन जब भगवान स्वयं साकार रूप में आ जाते हैं तो हमें उनसे प्यार करना इसलिए सरल हो जाता है कि वो अपना प्यार का सागर का रूप हमें दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि वो सचमुच प्यार का सागर है, वो कैसे हम सब आत्माओं को बहुत प्यार करता है। कोई किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, उसके पास तो ये भेदभाव नहीं है। तो वो अपनी पालना के द्वारा, वो अपने शब्दों के द्वारा, वो अपने व्यवहार के द्वारा, वो हमें मदद करके, वो समस्याओं में हमारे बोझ हल्के करके, हमारा सब गंदगी लेकर अपने प्यार को दर्शाता है। तो जब साकार में वो आते हैं और उसके प्यार की फीलिंग हमें होती है, तब हमारे मन में उसके लिए प्यार उमड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके द्वारा सभी के जीवन बदल गए, अनेकों को ऐसा समझें कि मृत्यु से उन्होंने नया जीवन दे दिया। अनेक बिल्कुल डेड हो गए थे, जीवन में खुशी, सुख, शांति कुछ नहीं रही थी, समस्याओं से घिरा हुआ जीवन था, उन्हें मुक्त कर दिया, प्रैक्टिकल मुक्ति यहीं दे दी। ऐसे समय पर मदद की जब संसार में किसी का कोई सहारा नहीं था, उन्हें जैसे दलदल से निकाल लिया। तो ऐसे में उनसे बहुत प्यार पैदा होता है। तो जैसे जैसे हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ करते जाएंगे, उनसे प्यार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम उनको पहचानते जाएंगे और हमें ये फीलिंग होती जाएगी वो हमसे कितना प्यार करते हैं या वो कितना सुंदर है, देखे मनुष्य को किसी के गुणों से प्यार हो जाता है, किसी के कर्तव्यों से प्यार हो जाता है, कोई हमें प्यार करता है तब प्यार हो जाता है। तो परमात्मा के कर्तव्य हमारे लिए कितने सुंदर हैं, कितने कल्याणकारी हैं, कितने दिव्य हैं, एक बात। दूसरा, वो स्वयं भी कितना सुंदर है
जी।
उसकी सुंदरता को वही पहचान सकते हैं जो उससे योग लगाते हैं, है तो वो निराकार
सत्यम शिवम। हाँ, शायद
इसीलिए कहा गया। और गुणों का तो सागर है, तो गुणवान व्यक्ति भी सबको प्रिय लगता है। और जिसके पास अथाह गुण हो, यानी कोई कमी हो ही नहीं, जिसके ढूंढने पर भी जिसके अंदर कोई अवगुण न मिले, तो वो तो सचमुच प्यार की प्रतिमूर्ति होती है। और जब वो साकार में आते हैं तो उनके वो प्यार का स्वरूप सब देख सकते हैं, तो हम सबके मन में उनके लिए प्यार बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा, भक्त भी स्वार्थ से भक्ति करने लगे, जिनके पास स्वार्थ नहीं वो नियम निभाने के लिए भक्ति करने लगे। चलो भाई हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, चलो भाई श्री कृष्ण है उसकी पूजा पाठ के ये विधान है पूरे कर देने हैं। लेकिन प्यार में मगन होना, ऐसी आत्माएं शायद करोड़ों में कोई हैं तो जरूर, पर करोड़ों में कोई मिलती हैं। और प्यार का सबसे जो बड़ा इनाम मनुष्य को मिलता है, परमात्म प्यार में मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है। तो जो ये मन भटक रहा है, योग अभ्यास करने वाले को जो शिकायत होती है कि मन बहुत भटकता है, बैठते मेडिटेशन में है और मन कहाँ कहाँ चला जाता है, तो अगर मनुष्य अपने मन को प्यार से भरपूर कर दे, ईश्वरीय प्यार से, तो उसकी ये भटकन भी समाप्त हो जाएगी, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों को, मेडिटेशन करने वालों को कहूँगा, परमात्मा के लिए प्यार उत्पन्न करें अपने मन में। और ये तभी हो सकता है जब, देखिए बहुत सूक्ष्म बात है, कहनी चाहिए हमें, जब देहधारियों से प्यार और वस्तुओं और पदार्थों से प्यार जितना जितना कम होता जाएगा, ईश्वरीय प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जैसे जैसे हम देह से न्यारापन का अनुभव करते जाएंगे, अशरीरीपन, बॉडीलेसनेस की प्रैक्टिस, तो जितने हम देह से न्यारे उतने ही परमात्मा के प्यारे, वो भी हमें प्यार करेगा और हमें भी उसके लिए बहुत प्यार पैदा होगा। हम भी उनसे बात करेंगे, वो भी हमसे बात करेंगे। जब बहुत अच्छी बातें होती हैं तो भी प्यार बहुत बढ़ जाता है। और जब ऐसा मेडिटेशन सभी लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति हमारे इस बैंक में 10 मिनट तो सवेरे और 10 मिनट शाम को, 20 मिनट हर व्यक्ति डोनेट करेगा, और कम से कम कई लाख लोग 10 लाख तो करेंगे। तो देखो 10 लाख इंटू 20 मिनट्स कितने हो जाएंगे।
वर्ल्ड बैंक की शायद आज कम आवश्यकता होगी, लेकिन इस समाधान के सहयोग बैंक की आज
बहुत
सबको ज्यादा आवश्यकता है। और ये हमारे समाधान परिवार की ओर से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा सारे संसार की आत्मा,
क्योंकि वर्ल्ड बैंक पैसा दे सकता है, वर्ल्ड बैंक इस तरह का कोऑपरेशन दे सकता है, लेकिन सुख शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता ये तो नहीं दे सकता। और संसार को आज इसकी ज्यादा कहीं जरूरत है पैसे से भी।
बिल्कुल,
इस बात पर लोगों को विचार करना चाहिए कि धन से भी अधिक जरूरत पड़ गई है पवित्रता की, विचारों की, शुद्धि की, संबंधों में अपनेपन और निस्वार्थ प्रेम की, जीवन में सुख शांति की, शक्तियों की। मनुष्य का मन निर्बल बहुत हो गया है, तो ये वास्तव में सबसे बड़े खजाने भी हैं। और अगर ऐसा बैंक हम बना देते हैं तो ये संसार के लिए एक अद्वितीय देन होगी।
बिल्कुल बिल्कुल भ्राता जी, ये बैंक तो जैसे शुरुआत हो ही गई है। हमने विचार अपने दर्शकों से मांगे हैं कि इस विषय पे उनके और क्या विचार हैं, किस किस समय वो कर सकते हैं, तो बहुत सारे विचार आने वाले दिनों में हमारे पास आएंगे ही। तो अगले कुछ दिनों में हम निश्चित रूप से इसे बकायदा सभी के सामने रखें ताकि एक साथ सभी लोग योग करेंगे। भ्राता जी, दो तीन बातें जो आपने कही हैं उनका स्पष्टीकरण थोड़ा चाहूंगा कि आपने कहा कि जैसे परमात्मा की मोहब्बत को हम अनुभव करें, प्यार को हम अनुभव करें और इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं आपने कहा, लेकिन जैसे वो निराकार है तो ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि उसके प्यार को, मदद को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी शिकायत है।
कुछ चीजें मनुष्य को अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। पहली चीज तो ये कि अगर निराकार के प्यार की और कोऑपरेशन की हमें अनुभूति करनी है तो हमें भी निराकार आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा। जैसे ही हम निराकार स्वरूप में स्थित होंगे तो उसके वाइब्रेशंस, उन वाइब्रेशंस से बहुत प्यार फील होगा और भिन्न भिन्न जगह पर उन्हें उसके सहयोग की जरूरत होगी। कहीं भी देखे, सहयोग तो मनुष्य को हर कदम पे आवश्यक हो सकता है। मान लो एक छोटी सी बात है, हमें जल्दी जाना है, हम बाइक पे जा रहे हैं और ट्रेन आ रही है और फाटक बंद होने वाला है और हमें उसकी मदद मिल गई कि हम निकल गए और फाटक बंद हुआ, ये भी मदद है। अगर पहले ही फाटक बंद हो जाता, समझो 5 सेकंड पहले ही, तो हमें 15 मिनट वहां रुकना पड़ता था, ये भी एक मदद हो सकती है। हर कदम पे मनुष्य को मदद की जरूरत पड़ती है। हम बाइक चला रहे हैं, स्लिप हो जाती है बाइक, हम गिरते हैं, गिर के कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों को फ्रैक्चर होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं होता, गिर के फिर उठ के चल देते हैं। तो ये ईश्वरीय मदद भी होती है, अपने श्रेष्ठ भाग की पहचान भी होती है। तो निराकार स्वरूप में स्थित होकर एक तो निराकार की मदद का अनुभव किया जाएगा, दूसरा है कि वो क्योंकि साकार रूप में आए हुए हैं और अब वो साकार रूप में नहीं है लेकिन ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो पुनः कार्यरत हैं, तो हम सूक्ष्म लोक में जाकर, ये मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं कि हम फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म लोक में अपने को स्थित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनके वाइब्रेशंस लेंगे, बहुत प्यार उनसे हम रास कर सकते हैं, उनसे हम खेल सकते हैं, उनके साथ हम सैर कर सकते हैं, उनसे नाता जोड़ सकते हैं, तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हमारे प्रियतम हो, या माँ हो, या बिल्कुल सखा हो, हमारे भाई हो।
मेडिटेशन का एक स्वरूप,
मेडिटेशन का ये एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है कि परमात्मा से हमारे सब संबंध हो जाए। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शायद परमात्मा से संबंध होने से लौकिक संबंध सारे छूट जाएंगे, बात संबंधों को छोड़ने की बिल्कुल नहीं है, बात है कि संबंधों में जो स्वार्थ और अटैचमेंट आ गया है, जो ईर्ष्या द्वेष आ गई है, बहुत कुछ नेगेटिविटी आ गई है, उसको छोड़ेंगे तो लौकिक संबंधों की ओर से कोई डिस्टर्बेंस मन में नहीं रहेगा और तब हमारा मन निरंतर परमात्मा की ओर खींचा रहेगा। बात यही होती है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं शायद लौकिक को पूरी तरह छोड़ देना होता होगा, बच्चे हैं हमारे 4, उनकी हमें कोई केयर नहीं करनी, वो पढ़े ना पढ़े, उनकी मैरिज हो ना हो, वो बीमार हैं तो मरे।
यदि आध्यात्म के रंग में रंग रहा है तो इतना रंगता चला जाता है कि शायद वो अपने व्यापार को, अपने परिवार को दरकिनार कर देता है और वहीं चला जाता है, तो शायद इसीलिए लोग डरते भी हैं कि हम भगवान को याद करें।
ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मनुष्य से, जो लोग ज्ञान को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं वो ऐसा कर बैठते हैं और ऐसा करने के बाद एक गलत संदेश दूसरे लोगों को चला जाता है। तो इसको हम समझ लें कि संबंधों में तो हमें रहना ही है, उनके साथ हमें संबंध निभाने भी हैं, लेकिन बस इतना कि जो ये निगेटिविटी संबंधों में आ गई है जो हमारे मन को खींचती है, देखिए दो चीजें हो गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। बच्चों से बहुत प्यार है तो मन बहुत खींचा जा रहा है, अच्छा बच्चे गड़बड़ करने लगे तो अब संघर्ष हो रहा है, तो माँ बाप को निगेटिविटी हो रही है, चिंताएं हो रही हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लड़की अपनी माँ से बुरा व्यवहार कर रही है, अब वो उसके छोड़ भी नहीं सकती, उसके पास भी नहीं रह सकती, वो किसी से प्यार करके शादी कर रही हैं, घर छोड़ के भाग रही हैं, तो ये परेशानियाँ। तो जहाँ मनुष्य का मन खींचा चला जाए इन सब चीज़ों में, इस खिंचाव को हमें छोड़ना है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है ज्ञान की। ईश्वरीय ज्ञान से हम इन संबंधों में लाइट रह सकते हैं, प्यार बहुत रहेगा लेकिन हम अनासक्त भी रहेंगे, हम कर्तव्य पालन भी करेंगे लेकिन हम साक्षी भी रहेंगे, तब हमारा संपूर्ण प्यार परमात्मा की ओर जाएगा, तब उससे हमें बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी, इसकी बहुत ज़रूरत है।
बिल्कुल प्रताप जी, आप बार बार एक बात कहते हैं कि परमात्मा अभी भी साकार में आए हुए हैं, साकार में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जिसका अनुभव ब्रह्मा कुमार कुमारियां कर रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये चाहेंगे कि परमात्मा, हमारे परम पिता जिन्हें जन्म जन्म से हम याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो यदि इस सृष्टि पर आके अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो हम भी तो उनसे मिलन मनाएं, हम भी तो उनसे प्राप्ति करें, तो वो कैसे उनसे मिल सकते हैं और उनसे प्राप्तियाँ कर सकते हैं।
बहुत बड़ी चीज है ना, गीता में सुनते आते थे भगवान ने वचन दिया था, जब जब धर्म की ग्लानी होगी मैं आऊंगा, मैं पहले भी आया था फिर आऊंगा। तो बहुत लोग सोचते हैं धर्म की ग्लानी आज से ज्यादा बड़ी कब होगी, जहां धर्म की ग्लानी तो छोड़ो, धर्म रहा ही नहीं, धर्म के लोग क्या क्या कर रहे हैं आज, धर्म को बदनाम कर दिया
और वो सारे लक्षण जी, वो जो जैसे गौ विष्ठा खाएगी
सब
आज पूड़ियों में मिलेगा आदि आदि इत्यादि हम सब देख रहे हैं।
तो लोग सोचते हैं कि भगवान भगवान को आना चाहिए क्या? भगवान बहरा हो गया, अंधा हो गया, उसे धर्म ग्लानी दिख नहीं रही? हमसे बात करते हैं लोग ऐसे ऐसे कि भगवान क्या कर रहा है, बहरा हो गया है क्या, बिल्कुल उसे दिख नहीं रहा क्या, धृतराष्ट्र बन गया है क्या, आंखें बंद करके बैठ गया है क्या, आता क्यों नहीं है, उसके सब मनुष्य इतने दुखी हो रहे हैं।
सुनना पड़ता है भगवान
को सुनना पड़ता है। लेकिन उसने कहा मैं आ गया हूँ, अब तो मुझे पहचानो, और वो अपनी पहचान दे रहा है। तो वास्तव में सभी, क्योंकि उसकी संतान है और सभी को संपूर्ण हक है, अधिकार है उससे मिलन मनाने का। मैं तो सोचा करता हूँ, देखो प्रारंभ से ही मैं इंडियन फिलोसॉफी बहुत पढ़ता था, बहुत अच्छा तर्क दिया जाता था मुक्ति के बारे में, कि अगर मुक्ति कभी होती नहीं, अगर मुक्ति से आत्माएं लौटती नहीं, तो मुक्ति की इच्छा क्यों होती? भगवान के मिलन की भी इच्छा होती है, तो अगर मिलन कभी हुआ ही ना होता तो मिलन की इच्छा क्यों होती? लेकिन हर मनुष्य भी, नास्तिक भी चाहता है भगवान को देख लूं, तो हम नास्तिक थोड़ा ही हैं, वो दिखता नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ कहता है, इसलिए हम नास्तिक हैं। तो हर व्यक्ति उससे मिलना चाहता है
जी,
तो इसे सिद्ध है कि वो मिलता अवश्य है। तो हम यही सबको कहना चाह रहे हैं, उसके मिलन का समय चल रहा है, चल ही नहीं रहा मैं तो कहूँगा पूरा होने जा रहा है। 77 साल से 77 ईयर्स से उसके मिलन का आनंद अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारियां उठा रहे हैं, उठा चुके हैं, हजारों लाखों बार उठा चुके हैं, रोज उठा रहे हैं। अब तो उसके वापिस अपने धाम लौटने का समय हो गया, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया ना, उसका कार्य पूरा हुआ, अब उसको फीलिंग हुई मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे चलना चाहिए, और वो गया वहाँ जंगल में वन में, उसे पता था मुझे जाना है वापस। बाकी तो कहानी बनी, भील ने उसको तीर मारा, ये तो निमित्त कारण बने। तो ऐसे ही परमात्मा के भी जाने का समय आता जा रहा है तेजी से, उसका कार्य भी इस धरा पर पूर्ण होने जा रहा है, और उसने अपनी कई आत्माओं को, अपने बच्चों को इतना योग्य बना दिया है कि उसके रहे हुए कार्य को वो बच्चे पूर्ण करेंगे। तो जिनकी भी इच्छा है, वो दर्शक हमारे, चाहे वो नॉन बीके हैं, बीके हैं, चाहे उन्होंने ज्ञान लिया है या नहीं लिया है, या हमारी रोज की बातें सुन के वो आनंदित होते हैं, उन सब का हम आह्वान करेंगे कि एक बार अपने परम पिता से मिलन का सुख अवश्य प्राप्त करें। वो भी आपको बुला रहा है, जैसे हमने उसे बुलाया है, अब वो हमें बुला रहा है, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें सत्य मार्ग दिखाऊं, मैं तुम्हारे दुख दूर करूं, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे अपना सब कुछ स्वाहा कर दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो वो हमारा आह्वान कर रहा है, और हम करते हैं अपने सभी दर्शकों का आह्वान कि आइए, और ये समय बीतने से पहले उससे अपने मिलन का परम सुख प्राप्त कीजिए।
ये तो बहुत सुंदर खुला निमंत्रण है भ्राता जी, इस मंच से कि हमारे सभी दर्शक आके मिलें। लेकिन कहाँ आएं और कैसे आएं, कुछ नियम मर्यादाएं?
बिल्कुल, आपने सुंदर क्वेश्चन किया, भगवान से मिलना
जी,
ऐसे वैसे तो कोई नहीं मिल सकता। प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो देश के,
तो एक प्रोसीजर है,
प्रोसीजर है, हर व्यक्ति तो सोचेगा भी नहीं वहां जाने का। भगवान से मिलना है, जो परम पवित्र है, उससे मिलने के लिए आत्माओं को अपनी प्योरिटी का लेवल तो उठाना ही पड़ेगा ऊंचा, क्योंकि अगर मन अशुद्ध है तो परमात्मा सामने खड़ा हो, उसकी भासना आत्मा को नहीं आएगी। जितने हम पवित्र हैं, हमारा खिंचाव परमात्मा की ओर, परमात्मा का खिंचाव हमारी ओर होगा ही। ये प्योरिटी इसमें मुख्य चीज है। इसलिए नियम ये है कि 1 साल तक पवित्रता का पालन किया जाए, योग अभ्यास सीखा जाए, किया जाए, खान पान को शुद्ध किया जाए, हमारे यहाँ आश्रमों पर डेली जो क्लासेज होती हैं उसको किया जाए, फिर हमारी जो निमित्त टीचर बहनें हैं वो यहाँ सब ग्रुप्स को लाती हैं माउंट आबू में, और यहीं पर परमात्मा का अवतरण होता है, वो समय निश्चित होता है, वो प्रोग्राम होता है, वो कोई कमरे में छुप कर नहीं होता, वो लाखों के बीच में होता है, सारे संसार के कम से कम 50 लाख लोग उसे देखते हैं, बिल्कुल वो सत्य है। और जब वो आते हैं चारों गहन सन्नाटा छा जाता है, जब वो बोलते हैं तो प्यार की तरंगे पूरे वातावरण में छा जाती हैं, उनसे वरदान प्राप्त होते हैं, अनेकों को दिव्य अनुभव होते हैं। तो हमारे दर्शक जो भी आना चाहें, इन नियमों का पालन करते हुए अपनी टीचर्स के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, और इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
मतलब जो जहाँ पे भी है, वहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं, पहले उन्हें वहाँ
जाना होगा,
और वहाँ जाकर के जो नियमित क्लासेस चलती हैं वहाँ पे वो करने होंगे। करेंगे और ये जो आपने कुछ नियम बताए हैं, ताकि एक तैयारी भी तो हम करते ही हैं भ्राता जी, किसी से मिलना हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो हम ऐसे ही तो नहीं चले जाते, अपने आप को वेल ड्रेस अप करते हैं।
इसलिए हम एक साल का समय देते हैं ताकि व्यक्ति अपने परम पिता को पूरी तरह पहचान ले, जो उसके मन में क्वेश्चंस हो, तर्क वितर्क वो करना चाहता हो तो वो कन्विंस हो जाए, उसको विश्वास हो जाए कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें वही मिलेगा जिससे तुम जन्म जन्म ढूंढते आए हो। तो ज्ञान लेने के बाद संपूर्ण विश्वास होगा, योग के अच्छे अनुभव होंगे, प्योरिटी अपनाएंगे तो प्रभु मिलन का सुंदर अनुभव होगा। कई बार ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, हम इस बात को छुपाना नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसे ही लोग आ जाते हैं कि भाई हमने तो एक मास ज्ञान लिया है, अगर भगवान आता होगा तो आगे बढ़ेंगे, उन्हें कुछ अनुभव नहीं होगा।
वैसे भी भ्राता जी, हम तो भक्ति मार्ग में कितनी यात्राएं करते रहे हैं, व्रत रखते रहे हैं, उपवास रखते रहे हैं, ना जाने क्या क्या करते रहे हैं, केवल मन में एक चाहना लेके कि उस परमेश्वर के दीदार हो जाए, वो हमारे सामने आ जाए और हम क्षणिक बस दर्शन ही कर लें। तो जब इतना कुछ हम करते आए हैं तो जरूर एक वर्ष की जो आपने एक साधना कही है वो तो उनसे मिलन के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा त्याग।
व्रत रखना तो भारत की एक रीति थी और ये रीति शुरू यहाँ से हुई कि भगवान ने आकर पवित्रता का व्रत रखाया था, खान पान का व्रत रखाया था, खान पान छोड़ने का नहीं, अशुद्ध खान पान छोड़ने का व्रत, उसकी यादगार में ये व्रत हुआ। इसको नेचर की ओर से जोड़ दिया गया, भाई देह की शुद्धि भी हो जाएगी एक दिन, जरा पेट भी शांत हो, सारा सिस्टम थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए उसे, इसलिए जोड़ दिया। बाकी अगर इस व्रत को हम पवित्रता के व्रत में बदल दें तो सचमुच बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी।
बिल्कुल भ्राता जी, ये तो रहा कि हम प्रभु मिलन की बात, उसके अलावा भी क्या माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मान लीजिए कि कोई विद्यालय नियमित रूप से नहीं जा पा रहा है, कहीं दूर रहता है, हमारे साथ टेलीविज़न के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो यदि आना चाहते हैं पहली बार किसी कार्यक्रम में तो क्या ऐसे भी कुछ कार्यक्रम?
देखिए हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर ऊपर कैंपस है बड़ा, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, और नीचे हमारा शांतिवन है जहाँ हम भी बैठे हैं, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमारे योग शिविर होते हैं तीन तीन दिन के, ऊपर ज्ञान सरोवर में हमारे विंग्स के तीन तीन दिन के सुंदर प्रोग्राम होते हैं भिन्न भिन्न वर्ग वालों के लिए, उसमें सारे भारत से और कभी कभी सारे संसार से लोग आकर इकट्ठा होते हैं। पत्रकारों का सम्मेलन हुआ, 3,500 पत्रकार आए, सारे भारत के धूम मच गई, सबके अखबारों में छपे, कई कई दिन तक लेख छपते रहे। तो जो भी इस तरह के इच्छुक लोग हैं, सत्य को जानने के जिज्ञासु हैं, या जिनको कुछ चाहना है कि उन्हें तो कुछ करना है, अब ये संसार देख लिया, यहाँ के संबंध देख लिए, अब सत्य ज्ञान की जरूरत है, एक सत्य मार्ग की उन्हें जरूरत है, तो वो यहाँ आते ही हैं और हम सबका मोस्ट वेलकम करते हैं कि जो भी लोग सत्य ज्ञान को लेना चाहें, हमारे इन स्थानों को देखना चाहें, कितना यहाँ पवित्र वातावरण है, यहाँ कितने स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है ईश्वरीय कार्यों के लिए, कैसे हजारों लोगों ने अपने सांसारिक सभी इच्छाओं का त्याग करके एक ईश्वरीय निष्काम सेवा का भाव अपने मन में जागृत कर लिया है, सबके चेहरों पर मुस्कान है। हम कहते रहे भाई साहूकार नहीं, हमारे पास तो सब साधारण लोग हैं, पर चेहरे तो चमक रहे हैं, बिना धनवान के चेहरे कैसे चमकेंगे। हम उन्हें बताते हैं कि असली धन इन्हीं के पास है।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज आपने खुले दिल से सभी को निमंत्रण दिया है, दोनों के लिए, परमात्म मिलन के लिए भी उन सबको आमंत्रित किया है, और साथ ही जो आकर के यहाँ विजिट करना चाहते हैं और इस विशाल कार्य को देखना चाहते हैं उन्हें भी आपका आज के पूरे ही कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक खुला निमंत्रण मिला है आप सभी को सत्य को देखने का, सत्य को परखने का, जानने का, इसको जरूर आकर के देखें, परखें और समझें। और वैसे परमात्मा की ओर से, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि परमात्मा मेडिटेशन में हमसे बात करते हैं, परमात्मा मार्ग पर चलना वास्तव में बहुत सुखद और आनंददायी है। परमात्मा कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। कितनी गहन बात है। अब तक हम अपनी चाहना के अनुसार जीते आए हैं, चलते आए हैं, लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया है कि हम परमात्मा की चाहना के अनुसार जी करके तो देखें तो हम पाएंगे कि जीवन कुछ और है, सचमुच इसका आनंद कुछ और है। तो इस आनंद के मार्ग में आप सबका हार्दिक निमंत्रण है। नमस्कार।